भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, श्री गोविंद कुंड की, सुरभि कुंड की, अप्सरा नवल कुंड की, नरसिम्ह भगवान की, पोचरिका लौटा बाबा की, रुद्र कुंड की जय। जय श्री राधे श्याम। तो हर अच्छा कार्यक्रम कलयुग में उसका अंतिम समय भी आ जाता है। हर एक सुंदर कार्य जो है वो कलयुग में शुरुआत होती है और उसका अंत होता है, और हर एक दुख भरी घटना भी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। कलयुग में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, शाश्वत नहीं है, सब समाप्त होने वाली है, नश्वर है। फिर भी उस सुंदर दिव्य कार्य में जब हम भाग लेते हैं तो उस दिव्य कार्य में जो दिव्य चेतना होती है वो चिरंतन रहती है। आपने जो भी कुछ आध्यात्मिक लाभ लिया होगा वो आपके साथ चिरंतन रहेगा। नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में जो छोटा सा भी कार्य स्वल्पमप्यस्य, छोटा सा भी इस मार्ग में कोई कार्य करता है वो चिरंतन हो जाता है, और वो त्रायते महतो भयात, वो भयंकर डरावनी जो चीज़ है उससे बचाता है। तो आप मुझे बताइए इस जीवन में सबसे बड़ी डराने वाली चीज़ कौन सी है? और किसी का कोई मत है? यस, वैष्णव अपराध। और सबसे बड़ी जो भय की बात है वो है कृष्ण की विस्मृति। कृपया ये समझ लीजिए कि मृत्यु सबसे बड़ी भयदायक बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप भक्त बनते हो तो मृत्यु एक वरदान हो जाता है। क्योंकि एक बार भक्त बनने के बाद भक्त लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि मृत्यु का समय उन्हें भगवान से मिला देता है। तो मृत्यु तब तक दुर्घटना है, दुखद घटना है, भयप्रद घटना है जब तक हम भगवान के भक्त नहीं हैं पूरी तरह से। जब भगवान के पूरी तरह से भक्त बन जाते हैं तो मृत्यु तो एक वरदान है। हमें तो कभी भी तैयार होना चाहिए जाने के लिए, कभी भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान से हमारी मुलाकात होगी, हमारा मिलन भगवान से होगा। तो जब जो घटना हमको भगवान से मिला देती है वो भयावह कैसे हो सकती है? हाउ इट इज़ डेंजरस, भय कैसे हो सकता है? वो भय नहीं हो सकता है। अगर किसी हमारे प्रिय व्यक्ति को कोई घटना हमको मिलाने वाली है समझो, तो वो दुखद घटना होगी फिर भी हमको आनंद आएगा, क्योंकि उस दुखद घटना के माध्यम से प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी हमारी। तो त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ा भय जो है वो भगवान की विस्मृति है, भगवान को भूल जाना है। जिस समय भगवान को भूल जाते हैं वो सबसे बड़ी भयानक स्थिति है, भय देने वाली स्थिति है। और जिस समय पर भगवान की स्मृति होती है वो सबसे बड़ी आनंद की और शुभ घटना होती है। जैसे हमारे अस्पताल में एक बार हमारे अस्पताल में महिंद्रा या महिंद्र कंपनी हमारे लिस्ट में है, वो मरीज़ हमारे पास एडमिट होते हैं कॉरपोरेट क्लाइंट्स, तो एक हैवी ड्यूटी होता है ना वो बुलडोज़र और क्या 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 होता है वो जेसीबी वो चलाते हैं बड़े हैवी ड्राइवर, उसके एक ड्राइवर वहाँ पर काम करते थे, तो उनका कुछ पैर का एक्सीडेंट हो गया काम करते समय, तो फ्रैक्चर हो गया, तो वो नेचुरली उनका हमारे पास लिस्ट में है, तो वो हमारे पास एडमिट हो गए। हमारे पास एडमिट हो गए तो पत्नी भी उनके साथ में उनको लेके आई, तो बहुत दिन रहे, ऑपरेशन हुआ, प्लास्टर हुआ, सर्जरी हुआ, बहुत सारा काम हो गया। वो पीरियड में वो जो प्रभु जी हैं जिनका फ्रैक्चर हो गया था, वो और उनकी पत्नी स्पिरिचुअल केयर सेवा के माध्यम से डिवोटी बन गए, व्यास फुला वाला जप करते दोनों, सब मांसाहार सब छोड़ दिया है, अभी घर में भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ पूरा वैष्णव बन गए। तो उनकी पत्नी सदैव मुझे बताती है, अच्छा हुआ इनका फ्रैक्चर हो गया। आपके लगा कैसी अशुभ बातें करते हैं पत्नी, बोला अच्छा हुआ फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से भक्ति विधान में आए, उसकी वजह से आज जीवन बदल गया हमारा। देखो पूरे गांव में, उनका गांव महाबलेश्वर में है, पूरे गांव में पता है कि ये भक्त बन गए, पूरे गांव में एक परिवार भक्त बन गया है। तो दुर्घटना हुई, दुखद घटना हुई, शुभ घटना नहीं हुई, पैर टूटा, लेकिन वो भी शुभ है क्योंकि उसने भगवान के ओर अपने को खींच लिया। तो गुड लक बैड लक हु नोज, ऐसे इंग्लिश में कहावत है, गुड लक बैड लक हु नोज। गुड लक होने के बाद भगवान को भूल गए तो वो बैड लक है, और बैड लक होने के बाद भगवान की याद आई तो वो गुड लक है। तो गुड लक को बैड लक बनाना भी हमारे हाथ में है, और बैड लक को गुड लक बनाना भी हमारे हाथ में है। इसलिए इस विश्व में कोई भी चीज गलत नहीं होती, हर एक घटना ये परिपूर्ण और भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान हमारे लिए कोई भी बुरी चीज नहीं करते, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा ही करते हैं। हमको वो अपने स्वार्थ के दृष्टि से कितना भी बुरा लगे, जैसे प्रभुपाद जी उनका फार्मेसी का बिजनेस था, तो ना एक दिन वो अपने दुकान में गए तो उनको सब कुछ वस्तु चोरी हुआ मिली, सब कुछ चोरी हो गया था, लूट गया था उनका ऑफिस, तो उन्होंने ताली बजाई, तस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम शनै, कि जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान जो भी जरूरत नहीं है वो सब चीज़ छीन लेते हैं धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, जो हमारी बंधनकारक वस्तुएं हैं वो सबको छीन लेते हैं और उस जीव को हमारे पास अपने पास बुलाते हैं। क्यों भगवान ने पांडवों को इतना कष्ट दिया, सब कुछ छीन लिया, वनवास भेज दिया, क्योंकि जितना जितना छीन लिया उतना उतना वो भगवान पर और निर्भर रहे, भगवान के उतना पास गए, भगवान के हो गए, और जितना भगवान के हो गए भगवान ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जितना छीनते गया उतना भगवान पर निर्भर होते गए, उतना भरबा भगवान सदैव उनके साथ में रहे, वन में भी उनके साथ में रहे, कई बार मिलने गए उनको वहां पर। इसलिए कुछ चीज खोने पर कभी दुख मत करना, उस खोने से क्या प्राप्त होने वाला आपको पता नहीं है अभी भी। और जब कोई हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे भावनाओं के लिए दुखद घटना होती है तो हमारे जो पाप है वो एक एक करके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और जब कोई खुशी वाली चीजें होती है तो एक एक करके पुण्य समाप्त हो जाता है। तो खुशी भी अच्छी नहीं है और पाप, दोनों सब नश्वर है। यहां पर एक ही चीज शाश्वत है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान हमारा उनका संबंध, हमारी उनकी सेवा जो है कभी नष्ट नहीं होती है, वो चिरंतन रूप में हमारे साथ रहती है, चाहे हम जवान रहे बूढ़े रहे, जन्म जन्म लेकर और कहीं चले जाए, फिर भी हमारा जो हमने किया है भगवान के विषय में वो हमारे साथ रहेगा, हमारे आत्मा के साथ यात्रा करेगा, शरीर यहाँ ही छूट जाएगा, हमारे आत्मा के साथ सारे हमारे आध्यात्मिक कार्य पर यात्रा करेंगे, हमारे साथ चलेंगे, आत्मा के साथ आत्मा वाली चीज़ें जाएंगी, शरीर के साथ शरीर वाली चीज़ें जाएंगी, क्या क्या, पैसा, प्रॉपर्टी, सुंदर शरीर, सुंदर बाल, सुंदर आँखें, वो शरीर की हैं, वो शरीर के साथ चली जाएंगी। जो आत्मा के सर पर इकट्ठा किया है धन, वो आत्मा के साथ यात्रा करेगा। जहाँ जहाँ आत्मा जाएगी, भगवान जहाँ ले जाएंगे, वो सब आपका आध्यात्मिक जो प्राप्ति है वो आपके साथ प्रवास करेगी। तो मैं आज आपको एक नम्र विनती कर रहा हूँ कि जो कथा मैं कल से सोच रहा हूँ आपको बताऊँगा, वो मैं अभी करने वाला हूँ। हम लोग सब लोग गिरिराज जी के तलहटी में बैठे हैं, गिरिराज जी के तट पर बैठकर हम गिरिराज जी के सान्निध्य में, गिरिराज जी के निकट बैठकर हम उनका गौरव करेंगे। आपको लिए मेरा निवेदन यह है कि मैं ये कथा, मेरी जो सासू माँ है वो आज सवेरे देहावसन हो गया, उनका निधन हो गया, तो उनके स्मृति में, उनके लिए अर्पण के भाव में कर रहा हूँ। तो आप भी उसी भाव से सुनना, उसके बाद में मैं कीर्तन करूँगा, तो वो भी आप हमारे सासू माँ के लिए करना। तो कल बहुत लोगों ने गिरिराज की परिक्रमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना भी की है, और हमारी पत्नी ने कल की गिरिराज परिक्रमा उनके लिए समर्पित की है, वैसे ही कर रहे थे। वो आज सुबह देहांत हो गया तो दूसरी बात है। तो उसी भाव से हम संक्षेप में गिरिराज की चाहनी जो हमको करनी थी वो आज करेंगे। तो दशम स्कंद में श्री कृष्ण भगवान एक बार गिरिराज के पास आते हैं। आप सबको पता है ना कि गिरिराज जी गोलोक वृंदावन में थे और भगवान ने उनको पृथ्वी पर भेजा द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में, और पुलस्त्य मुनि वहां पर गए थे दर्शन करने के लिए। तो उनको लगा कि काशी में, वो काशी से आए थे, काशी में कोई पर्वत नहीं है, और पर्वत जो होता है ना वो भगवान का भजन करने के लिए एक अनुकूल जगह होती है, ध्यान जप सेवा करने के लिए। तो उनको लगा कि हमारे काशी में तो पर्वत ही नहीं है, और उन्होंने दर्शन किया द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में गिरिराज का, इतना सुंदर दर्शन किया, बोला ये पर्वत अगर काशी में आएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो द्रोणगिरि से पूछा तो द्रोणगिरि बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी साधुओं की इच्छा थी तो उन्होंने हाँ कर दी, और गिरिराज तो तत्पर थे जाने के लिए। तो गिरिराज ने कहा कि मेरी एक शर्त है, आप मुझे ले जा सकते हो, तो भी वो ऋषि मुनि है, वो हमारे जैसे नहीं है, तो उसको पर्वत को उठा के ले जाने लेते हो। उन्होंने कहा आप मुझे उठा के ले जाइए, लेकिन आप कहीं रखेंगे मुझे तो मैं वहीं बच जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, वो तो क्या है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरिराज को उठाया और चलने लगे, और रास्ते में वृंदावन धाम आया। तो वृंदावन धाम आते ही गिरिराज गोवर्धन की भक्ति भावना जो है कृष्ण के लिए इतनी प्रबल हो गई, कि उस उनके भक्ति के भाव के प्रबलता के कारण पुलस्त्य मुनि को लघु शंका का असह्य वेग आया। जो कभी भी किसी प्रकार का वेग उनको प्रभावित नहीं करता है, वो लघु शंका का वेग उस समय उनको प्रभावित कर गया, क्योंकि गोवर्धन गिरिराज की भक्ति जो है उनके योग बल से भी ज़्यादा प्रभावी थी। झट से उधर रखा और लघु शंका करने गए, शांत होकर आए तो फिर गिरिराज को उठाने का प्रयास कर, तो गिरिराज नहीं उठ रहे। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा उठो। तूने कहा मैंने कुछ गलती नहीं की, आपने ही गलती की है, मैंने तो वादा किया था आपसे कि आप रखेंगे तो हम वहीं बस जाएंगे, आपने रख दिया तो हम बैठेंगे यहाँ पर। तो फिर क्रोध आया उनको, उन्होंने कहा कि तुम नहीं आओगे मेरे साथ तो मैं आपको शाप देता हूँ, रोज एक तिल का आकार से आप जमीन में धस जाओगे। उन्होंने कहा मंजूर है मुझे। तो ये भाव जो है वो इतना प्रबल होने का कारण क्या था, क्योंकि यही भगवान के आगे वाले समय में आने की भूमि है, वृंदावन धाम है, यहीं पर सेवा करने के लिए उनका जन्म हुआ है हिमालय में, यहीं पर उनका डेस्टिनेशन है, यहीं पर सेवा करनी है, इसलिए वो वहाँ आते ही रुक गए, वहीं बस गए। पुलस्त्य से मैंने खाली हाथ चले गए। पितृतायुग आया, प्रभु रामचंद्र को सेतु बांधन की जरूरत थी, हनुमान जी सब जगह डोल रहे थे, तो हनुमान जी ने देखा अरे इतना सुंदर पर्वत है, सात कोस की वहाँ पर गैप था और सात कोस का ही पर्वत निकला, बोले चलो उठा लो इसको। तो इतने सारे पर्वत तो ऐसे ही उठाए, तो उन्होंने ऐसे एकदम सहजता से, तो उसी सहजता से इसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं उठा पाए। दोनों हाथ पूरा बल लगाया फिर भी नहीं उठा पाए। सोचा कि देखता हूँ कितना दूर है ये, तो यहाँ से गए तो उधर से गिरिराज बढ़ने लगे, यहाँ से गए तो इधर से बढ़ने लगे, अंत ही नहीं मिला। तो हनुमान जी ने दंडवत किया, लेकिन महाविभूति हो, कौन हो आप, परिचय कराओ। तो गिरिराज ने कहा आप सीधे आए हो, उठाने लगे, कोई पता है नहीं, नाम नहीं दिया, परिचय नहीं दिया, कार्य नहीं बताया, सीधे उठाने लगे। तो हनुमान ने फिर संक्षिप्त रामायण सुनाया उनको, क्या हुआ और मैं क्यों उठा रहा हूँ आपको। तो वही गिरिराज जी जो हनुमान जैसे अत्यंत बलवान व्यक्ति को टस से मस नहीं कर पाए, वो ना रोई की तरह बन गए और ऐसे उठा के आकाश में मिले गए। अरे प्रभु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आकाश में उड़ गए तो आकाश में आकाशवाणी हो गई, बस बस अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है, हो गया ब्रिज पूरा हो गया। तो हनुमान जी तुरंत नीचे लखा उनको, और गिरिराज जी रोने लगे, बहुत भयंकर रोने लगे। उनका रोना देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, अरे कैसा भक्त है ये, ना महान भक्त है, इतनी भावना, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतनी प्रतीक्षा का भाव। तो फिर वो हनुमान जी, वो तो जल्दी में थे ना, उनका तो वहाँ पर बहुत लंबा समय था युद्ध करने का था, सीता देवी ने वहाँ पर चेतावनी भी देखे रखी थी, इतने समय में ब्रिज नहीं बनेगा, मुझे आकर नहीं ले जाओगे तो मेरा मृत शरीर प्राप्त करोगे। तो ऐसा लंबा समय नहीं था, फिर लाइट लगाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए तुरंत जाना था, तुरंत गए। हनुमान जी ने भगवान को खबर दी कि मैं ऐसे आपके भक्त को मिला, क्या कहूँ मैं आपको। भगवान कहा, भगवान ने कहा कि अरे वो मेरे परम भक्त हैं, वो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी। तो भगवान ने कहा जाओ उनको संदेश दे दो कि आपको दो विकल्प देता हूँ, एक में अभी आप आ जाओ और दर्शन करो मेरा, मैं चरण कमल रखूँगा और ब्रिज पार करके लंका जाऊँगा, बस हो गया, कुछ समय का चरण स्पर्श मिलेगा। दूसरा पर्याय है अगले युग में मैं आने वाला हूँ कृष्ण के रूप में, तब आप रहोगे तो आपके ही आसपास 11 साल 52 दिन मैं आपके आसपास अंतर्गत लीला करूंगा। तो भक्त लोग होते ना बहुत चतुर होते हैं, वो सोचते हैं कि किस में भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता होगी, भगवान ज़्यादा प्रसन्न किस में होंगे। अगर मैं बहुत समय तक उनको अपने सखियों के साथ, सखाओं के साथ, गैयों के साथ लीला करने के लिए अवसर दूंगा तो अच्छा रहेगा, और दो क्षण के लिए कदम डाल के लंका पहुंचना है उसमें उनको ज़्यादा आनंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्वत वैसे भी ब्रिज पूरा हो गया है, मुझे उसके बाजू में कहीं खड़ा करेंगे और मेरे ऊपर चलेंगे। तो भगवान के आनंद के लिए उन्होंने दूसरा पर्याय चुन लिया, लेकिन दूसरा पर्याय चुनने के बाद में समय बहुत था बीच में, तो बहुत व्याकुल थे वो, समझे आप बहुत भूखे हो 7 दिन के, कुछ अन्न भी दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक, तो आप सहन कर लेते हो। और 7वें दिन आपको 56 भोग की थाली नजर आई और बताया गया कि अभी देख लो, अभी आपको ये कल खाने को मिलेगा, तो क्या होगा, आप जो अच्छी तरह थे वो तड़पना आरंभ होगा, क्योंकि आपने देख लिया ना अभी उसको, देख लिया आपने उसको, अगर आज भी नहीं देखते तो कल तक भी आराम से चलते, लेकिन आज देख लिया और आज नहीं मिल रहा है, कल मिलने वाला है, तो बहुत तड़पते। वैसे इतना समय तक प्रतीक्षा किया और अभी भगवान की सेवा मिल ही रही थी लेकिन वो छूट गई, अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। तो हनुमान जी को कहा कि अभी आप मेरे साथ रुको, यहाँ पर कुछ साथ देना चाहिए ना मेरे दुख में, विरह में। तो फिर हनुमान जी वो पुचरी का लौटा बाबा बनकर वहाँ पर रह गए, और वो सारा समय जो है वो गिरिराज जी और हनुमान जी ने भगवान के विरह में बिताया। ये द्वापर की कथा है। फिर कलयुग में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, और जैसे मैंने कई बार बताया आपको, हर समय पर, हर प्रकार से, हर विधि से, हर रस में गिरिराज गोवर्धन ने भगवान की सेवा की, रासलीला भी की उसके अंदर, गौचारण किया, सखाओं के साथ लीला किया, खेल कूद सब किया। और उसके बाद में एक दिन कृष्ण गिरिराज की ओर आए घूमते घूमते, तो देखा कि बड़ा वहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं, बड़ी स्त्रियां पुरुष सब लगे हुए हैं, बहुत बिजी हैं सब लोग, और लग रहा है देख के कि कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है। तो बाबा से आके पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा देखो, इंद्र भगवान की कृपा से हर साल वर्षा होती है, उसके वजह से पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है, घास मिलती है, अन्न हम खाते हैं, घास में गायें चरती है, फिर गायें दूध देती है, फिर हमारा सब व्यवसाय उधर निर्वाह चलता है, इसलिए हम इंद्र के बहुत ऋणी हैं, इसलिए हर साल हम इस समय पर इंद्र की पूजा करते हैं। कौन से दिन करते हैं? अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन इंद्र पूजा का दिन है। जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं उसी दिन गोवर्धन पूजा होती है। हाँ, न्यू ईयर हिंदू। तो कृष्ण ने कहा कि क्या जरूरत है इंद्र की पूजा करने का, सूरज भी पूजा करने योग्य है वैसे देखा जाए तो, वो सबको प्रकाश देता है, आरोग्य देते हैं वो, इंद्र की क्यों पूजा करना जरूरत है। हवा की भी पूजा करना चाहिए, वायुदेव की, वो भी सबको प्राणवायु देते हैं। बट पापा आप समझ लो कि ये सारे देवता भगवान विष्णु के सेवक हैं, वो आप पूजा करो या ना करो उनको अपनी सेवा करनी है, आप पूजा करो ना करो सूरज उगने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी गायें जो है वो गोवर्धन की वजह से जीवित है, वो गोवर्धन उनको घास देता है, फल फूल देता है, हर प्रकार की सुविधा गोवर्धन के द्वारा उपस्थित होती है। तो ये इसी साल में क्यों बोला 7 साल के बाद, 7 साल के रोज हर साल पूजा हो रही है, क्योंकि भगवान को ये अनुभूति हुई थी कि इंद्रदेव को थोड़ा थोड़ा गर्व हो रहा था अपने पद का, और इंद्र उनके भक्त हैं तो वो अपने भक्त का गर्व कभी सहन नहीं करते, भगवान को अच्छा लगता नहीं है। अब खास करके अपना भक्त का जब गर्व वो देखते हैं वो, तो वो कुछ लीला करके उस गर्व को काट देते हैं। जब राक्षस में गर्व देखते हैं तो उसका वध कर देते हैं, भक्त में गर्व देखते तो उसका कुछ लीला करके उसको गर्व को काट देते हैं। यानी समझो किसको ट्यूमर हो गया तो या तो आप उसी को गोली मारो या ट्यूमर को निकाल दो। तो राक्षस आया ट्यूमर लेके तो गोली मार देते हैं, और भक्त आया ट्यूमर लेके तो ट्यूमर निकाल देते हैं, भक्तों को फ्री कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है। वो आप सोचेंगे जो जो आया सबको मार दिया, इंद्र ने तो उनसे भी अधिक भयंकर कार्य किया था, क्योंकि जो भी राक्षस आया ना वो केवल कृष्ण को मारने के लिए आया था। इंद्र ने ऐसा काम किया, कृष्ण के साथ सारे ब्रजमंडल में जितने भी जीव हैं ब्रजवासी है सबको खत्म करने का ऑर्डर दिया था, किसी भी राक्षस से भी भयंकर काम किया था उसने। फिर इंद्र को उन्होंने क्षमा कर दिया, बाकी सबको यमराज के पास भेज दिया। यही फर्क होता है भक्ति में, भक्ति करने से सारे रूल बदले हो जाते हैं। हमको सबको सीखना यही है, कुछ भी करो कैसे भी रहो भक्ति में लगे रहो, कि आपके भक्त के रूप में अगर गणना होगी ना भगवान के लिस्ट में तो आपको हमेशा क्षमा की जाएगी और आपको बचाया जाएगा, दंड मिलेगा लेकिन आपका नाश नहीं होगा। प्रति जाने ही ये कौन्तेय न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन तू तो घोषणा कर दे एक बार कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मरेगा, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा अर्थात मेरे भक्त की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी, सदैव जीवित रहेगी। एक बार भक्ति करेंगे तो मेरे भक्त सदैव जीवित रहेंगे, भक्ति में शरीर बदलता रहेगा लेकिन भक्ति कभी नाश नहीं होगी। तब इंद्र को पिताजी को भगवान ने समझाया तो वो उसको कहते हैं कर्म मीमांसा चर्चा, वो भगवान ने उधर की है, वो झूठ मूठ की सिद्धांत है, वो खाली भगवान को अपने पिताजी को समझाना था, इसलिए मनाना था, इसलिए उन्होंने ये कर्म मीमांसा जो सत्य नहीं है उसको पालन नहीं करना है हमको, लेकिन भगवान ने पिताजी को समझाने के लिए वो उसका उपयोग किया, पिताजी मान गए। फिर बोला क्या करना है अभी ये सारी, वो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं आपकी इच्छा है गोवर्धन की पूजा करना अलग से करेंगे सेपरेट, इंद्र की पूजा भी करेंगे वो भी करेंगे। बोला नहीं यही व्यवस्था से इंद्र गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा कैंसिल करेंगे। इस पर भगवान डटे हुए थे और वो विन विन सोच रहे थे कि भाई चलो इंद्र को भी खुश करेंगे ये बालक की इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान ने कहा नो चॉइस ओनली गोवर्धन। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सारा जो व्यवस्था तैयारी की रही है उसको गोवर्धन को पूजा करेंगे। तो भगवान ने फिर बोला सबको बताया कि घर में जितने भी व्यंजन हैं सब लेके आओ और पहाड़ के रूप में भगवान को भोग लगाओ गोवर्धन को, उसको कहते हैं कूट, कूट यानी क्या है पर्वत, अन्न के कूट बना दो सदैव हम लोग क्या करते, थाली में एक कटोरी सब्जी, एक दाल, एक मिठाई, एक चौपाटी रोटी पकौड़ा बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। तो कहा पहाड़ के रूप में बनाओ। तो सारे सज धज के आओ सब लोग, सब ग्वाल बाल बड़े खुश हो गए, गोपियाँ ग्वाल बाल, और इतना अलंकार पहने, इतने वस्त्र पहने, फेटा पहने, पताका लगाए सब जगह पर, और गोडाउन में जितना भी सामान था वो सबका 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 खाना बना दिया उन्होंने। हर वस्तु के पर्वत बने, जितने भी द्रव्य थे पीने वाले पेय उसके हौद बनाए, तालाब बनाए, तालाब लस्सी के तालाब, खीर के तालाब, शरबत के तालाब, रस के तालाब बनाए, जैसे जिलेबी मालपुआ बर्फी वो सबके पहाड़ बनाए, अन्न के पहाड़ बनाए। वो जो था ना दान निवर्तन कुंड, वहाँ से लेकर आनियोर गांव तक आज भी कम से कम 3-4 किलोमीटर का अंतर है। उतने अंतर में एक छोटी उंगली रखने की भी जगह नहीं थी, इतने सारे पदार्थ थे उसमें। वो हमने दान निवर्तन कुंड के बाजू में एक बार हमारी गोवर्धन यात्रा में 2000 लोगों ने अन्नकूट का फेस्टिवल बनाया था, तो वो कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जगह घेर लिया उसने, 2000 लोगों ने कई घंटे ऐसे पर्वत बनाए थे, लेकिन वो मुश्किल से 50 फीट बाय 100 फीट की जगह ही घेर पाए। और वो इतना प्रसाद था कि 2000 लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, 4-4 थाली लेकर खा रहे थे। देने वाले तो दे रहे थे, लेने वाले ले रहे थे, एक में सूखा, एक में गीला, एक में ये एकदम मीठा, एक में नमकीन, ऐसा करके 4-4 थाली बन के खा रहे थे। और एक बड़ी थैली सबको दे रहे थे, बचा हुआ घर ले जाओ, और जितना देने पर भी फिर भी बचा, केवल 50 फीट बाय 100 फीट जगह में था वो। 4 किलोमीटर अगर भर दिया जाए तो कितना होगा, और ये एक वर्णन है। दूसरा वर्णन ऐसा आता है कि 22 जितना भी उस समय गिरिराज की परिक्रमा थी, जो सत्ययुग से ढस ढस के जितनी बनी हुई थी, वो सारी परिक्रमा में सब जगह भोग लगाए गए थे, पूरी परिक्रमा में, और सब व्यवस्था की। और फिर भगवान ने कहा कि सबसे पहले हम गोराज की परिक्रमा करेंगे। तो सबसे पहले गिरिराज की परिक्रमा भगवान के नेतृत्व में की गई, भगवान ने पूरी परिक्रमा की, और फिर वापस आके खड़े हो गए। फिर उन्होंने वो भोग लगाया, ब्राह्मणों ने भोग लगाया गिरिराज को, और गिरिराज जी के सामने कृष्ण खड़े हैं 7 साल के, और भोग लगाया तो स्वयं गिरिराज कृष्ण बन गए, अर्थात वो विशाल रूप के जो गोवर्धन थे वो स्वयं कृष्ण बन गए। उनके हजारों हाथ है, उसके हजारों हाथ, और इतना दिव्य शरीर है उनका, सब मिलकर एक गोवर्धन भगवान बन गए। और इतने सारे व्यंजन जो थे उन्होंने ना कुछ ही क्षणों में लटक लिए, ऐसे नहीं कि एक लिया फिर अच्छी तरह से उसको चबाया, खाया, आनंद लिया, वाह वाह क्या बढ़िया है, दूसरा लिया, कुछ ही क्षणों में देखते देखते पूरा भगवान ने फस्त कर लिया उसको। उसमें एक गोपी थी नंद बाबा की, बहुत बड़ी सेविका थी वो, उसका नाम था बदरोला। क्या नाम था, क्या नाम था, बदरोला गोपी, वो नंद बाबा की सेविका थी। वो नहीं आई थी उस दिन वो सब करने के लिए, तो उसने क्या किया, वो उनका गांव जो है ना वो ऊंचे गांव के पास में है बरसाना में, उसने अपने घर के बाहर वो पर्वत बना के रखे है ना। तो भगवान ने क्या किया, वो ऐसे भगवान जो है ना वो मथुरा की तरफ मुंह करके खड़े हैं दक्षिण की ओर, और बरसाना उत्तर की ओर है, मतलब उनके पीछे है। तो भगवान ने एक हाथ पीछे से बढ़ाया, 7 कोस बढ़ाया, 20 किलोमीटर्स बढ़ाया, वो पर्वत भी खाली है। तो उस गांव का नाम पड़ा है बदरोला, आज भी वो गांव है उसके गौरव में, कि उसकी भक्ति और भाव को देखकर भगवान ने एक हाथ पीछे बढ़ाकर उसके व्यंजन पर भोग लिया उसका, आगे हाथ बढ़ाया और एक जगह पे भोग उठाया, किसी ने बनवाया था, उस जगह का नाम पड़ा हाथरस। इस प्रकार से बहुत अद्भुत तरीके से भगवान ने सब कुछ भोग ले लिया, और तत्क्षण सारे भोगों को वैसे प्रकट किया जैसे उन्होंने भोग लिया था, एज इट इज। और भगवान ने फिर बताया कि कैसे कैसे लोगों को बांटना है उसको, सबसे पहले वृद्धों को देना है, फिर बालकों को देना है, फिर स्त्रियों को देना है, फिर पुरुषों को, संतों को देना है। इस तरह से पूरे प्रसाद का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि कैसे उसको बांटना है, और सब ग्वाल बालों ने बड़े ही आनंद से सारे भोगों को ले लिया, सारे बहुत आनंद आया। पूरे ब्रज की लीला में इतना आनंद का, एक साथ वाला अनुभव और कभी भी नहीं आया। इसलिए आपको कभी भी ऐसा लगेगा ना मन उदास हो रहा है, तो आप गोवर्धन पूजा का प्रसंग पढ़ो, बहुत आनंद आएगा आपको भागवत में, क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद है। हमने उसका ड्रामा भी किया था, वो सब हम लोग सब थे, गिरिराज प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, मैं और हर व्यक्ति उसके अंदर। बहुत लंबी वो जन संगठना थी, उसके अंदर गिरिराज का ड्रामा किया गया था, और वो इतना ड्रामा भी इतना आनंदमय था ना, उस पर आनंद ही आनंद था पूरा। भगवान को भोग लगाना, सज धज के आना, डांस करना, पाना उसको भगवान, बहुत आनंद आया उसके अंदर। लेकिन हर भौतिक विश्व में हर एक आनंद के बाद में दुख तुम्हारा वेट करते रहता है, प्रतीक्षा करते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा आनंद हो गया तो समझना कुछ होने वाला है अभी इसके बाद, बहुत दुख हो गया तो समझना अभी कुछ खुशी की घटना भी आने वाली है। क्योंकि बहुत गहरी रात के बाद में क्या होता है, दिन आता है। बहुत कड़क दिन के बाद में क्या होता है, फिर अंधेरा आता है। ये सिलसिला चलते रहता है। तो सब लोग आनंद में बहुत विभोर होकर घर चले गए। इसमें एक विशेष बात समझना जरूरी है, उन्होंने अपने सारे भंडार उस दिन खाली किए थे। साल भर का स्टॉक था ना गोडाउन, वो सारा अनाज उस उपयोग किया था। उनके पास अगले जो डिनर या कुछ भी बोलो उसके लिए कुछ था नहीं घर पे। लेकिन जब घर पे गए तो उनके सब भंडार भरे हुए थे। भगवान को देने से कभी कमी नहीं होता, याद रखना। भगवान को कुछ भी देने से कभी समाप्त नहीं होता है, उतनी ही भगवान कैसे है ना, जो किसी से लेते हैं कुछ, तो भगवान कोई ऋण अपने पर रखते नहीं है। आपने भगवान को कुछ दिया, भगवान तुरंत भर भर के आपको वापस करते हैं। इसलिए भगवान को देने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है। हम 50 बार सोचते हैं जन्माष्टमी को इसमें कितना देना है, कितना देना है, हॉस्पिटल में कितना देना है, बहुत सारा खर्च होगा, फिर हमारे पास क्या होगा। लेकिन मेरा ये स्वयं का अनुभव है, आप बिना सोचे देते रहो, आपके भंडार में कभी कुछ कमी नहीं होगी। आप खाली देने का संकल्प करो और देते रहो। मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैंने दिया और मेरे पे कुछ संकट आया और मैं उधर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। जितना देते जाओ उतना भंडार भरे रहते हैं। तो ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने अपना पूरा समर्पण दिखाया है इसके अंदर। अगर भगवान की इच्छा है समर्पित कर दो, लौट के आए सब भंडार भरे हुए हैं। वो फल वाली ने सारे फल दे दिए भगवान को, जा जा के घर में वापस आकर जा जा के फल लाकर सब खाली कर दिए। जब लौट के गई तो उसी टोकरे में सारे जेवर भरे हुए, अलंकार भरे हुए। तो फल की कीमत क्या होती है, अलंकार तो इतने सारे भरे हुए। लेकिन उसे सोचा नहीं था कि मैं दूंगी सारे फल ना तो मुझे अलंकार मिलने वाले हैं, देव देव सब लोग अलंकार मिलने वाले हैं। नहीं, उसको पता नहीं था, वो तो दे रही थी निरपेक्ष भावना से दे रही थी। लेकिन भगवान किसी का लिया हुआ ऋण जो है ना रखते नहीं है, उसका पूरा दामन भर देते हैं। तो फिर घर गए सब लोग, तो घर जाते ही बहुत भयंकर वर्षा होने लगी। छोटी मोटी रिमझिम वर्षा नहीं जो कल यहाँ पर हुई थी कुछ समय के लिए, आज सुबह भी कुछ समय के लिए हुई, वैसी नहीं, मूसलधार वर्षा हुई। और वो भी ऐसी वर्षा हुई कि पता है, लगता है कि अभी प्रलय काल ही आने वाला है। प्रलयंकारी वर्षा होने लगी, क्योंकि प्रलयंकारी बादल ही वर्षा रहे थे, और वो भी एकदम प्रलयंकारी बादल जो होते हैं ना, वो पूरे ब्रह्मांड में वर्षा करते हैं। वो पूरे 14 लोक में जो वर्षा होकर ब्रह्मांड का नाश करने वाला है, वो केवल 84 कोस भूमि पर किया जा रहा है। तो होगा ना कॉन्सेंट्रेशन, आप सोचो आपके पास 50 बारूद है, सब एक ही जगह डालने हैं आपको, तो कितना नाश होगा। और 50 बारूद 50 जगह डालने हैं तो एक एक जगह पे कितना नुकसान होगा। प्रलयंकारी बादल केवल ब्रज में वर्षा कर रहे हैं सर्वनाश करने के लिए। इतना प्रलय से भी अधिक भयंकर अनुभव था वो। सब बाल बाल देख रहे हैं, अपनी गायें बह रही है, बछड़े बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, कोई दिखता ही नहीं है, किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, कितना पकड़ के रखेंगे। अंधेरा पूरा, ठंड, बर्फीली ठंड, वर्षा ऊपर से, कंफ्यूजन। दूसरा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसमें कृष्ण को पुकारा, फिर मैं आपको कल बताया कृष्ण ने वो पेड़ निचोड़ के दिखाया, प्रविष्ट कुंभ में प्रवेश किया और गिरिराज को उठाया। और गिरिराज उस समय अपने क्षेत्र में थे, इसके उस तरफ मथुरा और गोकुल, उसके उस तरफ बरसाना, नंदगांव, काम्यवन, ऐसा पूरा ब्रज का विस्तार था। लेकिन इस लीला में क्या हुआ, सारे ब्रज के लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पर। भगवान ने कहा आ जाओ गिरिराज के नीचे आ जाओ। जो इतने विस्तार वाले क्षेत्र में रह रहे हैं वो अगर एक साथ आते हैं तो गिरिराज उसको कवर कर पाएगा क्या, क्योंकि वो इतने विशाल एरिया में रह रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, वो गिरिराज को बढ़ाया, ऑलमोस्ट पूरी ब्रज भूमि को कवर किया उन्होंने, अर्थात सारा ब्रज मंडल गिरिराज के अंदर आया। ऐसा नहीं कभी वर्णन सुना है कि वहां पर खड़े रहने को जगह नहीं थी, धक्का मुक्की हो रही थी, चिंगरा चिंगरी हो रही थी, हाँ हाथ हिलाने को जगह नहीं थी। ट्रेन में कैसे कर दिए होते ना विराट ट्रेन में, वैसे नहीं था उधर, बहुत बढ़िया जगह थी। सब लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, गायें चर रही थी, सब गायें भी, करोड़ों गायें भी उसके अंदर थी, करोड़ों गोपियाँ, करोड़ों ग्वाल बाल, करोड़ों ब्रजवासी, छोटे बच्चे, बछड़े, फिर भैंसे, भैंसियाँ, सब बकरियाँ, खरगोश, हिरन, जितने भी जीव थे वो सब उसके अंदर थे। कितनी जनसंख्या होगी बताओ आप, सबको भगवान ने गिरिराज को विस्तारित करके अपने अंदर ले लिया। ये ना ऐसे हमको सोचना चाहिए कि हाँ उठा लिया उन्होंने, सब लोग उसके नीचे आए, कैसे आए उसके नीचे, हाउ इट इज पॉसिबल। भगवान ने विस्तारित किया और सबको इत्मीनान से रखा, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई कालबा देवी का एरिया नहीं है, ये चलने को जगह नहीं है, पूरा आराम से चल रहा है। और ये जो उसके अंदर जो हुआ ना 7 दिन 7 रात, वो सबसे अद्भुत था। अभी मैया दिख रही है, हाँ मैया दिख रही है, क्या बोल रही है, अरे इतना सा बालक, इतना पहाड़ पहाड़ को उठा के रखा है, उसको हाथ में दर्द होता रहेगा। बोलते कन्हैया हाथ तो बदल ले, मैं इस हाथ को मालिश करती हूँ, एक हाथ से मालिश करती हूँ, एक हाथ से मक्खन खिलाती हूँ, थोड़ा बल तो आएगा। तो लग रहा है कि एक ही हाथ पकड़ कर रखा है तो ये दर्द होगा ना उसको, बहुत देर से पकड़ कर, और खिला रही है मक्खन उसको और कह रही है सखियों को देखो मैंने इतने इतनी मेहनत करके वो घास वहाँ से खिलाया, यहाँ से दूध निकाला, वहाँ से मंथन किया, वहाँ से ये किया, और पद्मगंधा जो मक्खन तैयार किया ना वो खिला खिला के शक्ति आ गई, देखो आज उठा पा रहा है ना, कि इतने उठा पा रहा है वो, इतना मेहनत की थी मैंने। सब बड़े बड़े गोपियाँ चर्चा कर रही है, मैया बता रही है, तो ग्वाल बाल हंस रहे उसको देख के, अरे ये मैयाओं को कुछ पता नहीं है, इनको लगता है कि मक्खन खा के बल आया है। हमने जो रोज कुश्ती खेल खेल के इसको हराया ना, इसके वजह से आज इतना ताकतवर बन गया हो। हर रोज ट्रेनिंग दिया गौचारण के अंदर, कुश्ती करके उसको हमें चितपट कराया, जो बल प्राप्त हुआ उसके वजह से उठाया है। तो ये सुनकर गोपियाँ हंस रही है, अरे ये ना मैया को पता है ना ग्वाल बाल उनको पता है, हमें पता है। ये तिरछी नजर से राधा रानी को देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो नजर में जो शक्ति है उसकी वजह से उठा पा रहे हैं। बीच में क्या हुआ, सब ग्वाल बाल बड़े मिलकर ना शांडिल्य मुनि के पास गए, वो भी उसके अंदर है। अभी वर्षा हो रही तो गुरुजी भी रहेगा ना उसके अंदर, वो कैसे बाहर रहेंगे, गुरुजी संत सब लोग उसके अंदर है। तो गुरुजी को बुलाया, उन्होंने बोले महाराज कुछ करो, ये बच्चा इतना छोटा सा है, उतना पकड़ रहा है, कुछ करो कि भाई पकड़ के रखे, भाई वो समझो छोड़ दिया उसने बच्चा, नहीं तो क्या करेंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, अब बच्चा को कैसे डांटेंगे, तुमने उठाया क्यों, फिर गिराया क्यों, कैसे बोलेंगे उसको। तो शांडिल्य मुनि ने क्या कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, एक सिंहासन लेके आओ, उसके सामने ही रखो जहाँ खड़ा है, राजा रानी को बिठा दो, बस राधा रानी को देखता रहेगा, राधा रानी उनको देखती रहेगी, ये नजरों के बल से ही उठाए रखेगा वो। तभी क्या हुआ, राधा रानी को लाया ना, तो राधा रानी को सिंहासन पर बिठाया और बिठाते ही राधा रानी को देखकर भाव विभोर होगा और कृष्ण कांपने लगे, ऐसे 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 प्रेम से कांपने लगे, गदगद होने लगे। तो बोले महाराज आपने क्या नुकसान दिया, पहले तो स्थिर था अभी अस्थिर कर दिया। तो राधा रानी को लगा कि अगर मैंने मेरे प्रियतम की लाज नहीं बचाई तो कैसे होगा। तो राधा रानी अपनी नजरों से पर्वत को उठाए रखा और ये अपने आराम से कांपते रहे, तुम भावनाओं को व्यक्त करते रहो, मैं तुम्हारा काम करती हूं, यही सच्चाई है। तो गौ गोपियां क्या कह रही है, अरे इनको किसी को पता नहीं है कि इतना बल कहां से आया, इनका बल तो है ही नहीं, ये राधा रानी नजरों का बल है, कोई माखन खाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसे सुंदर कहावत है, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु माखन से बल बढ़ियो, यानी कुछ कारण तो उठाने का माखन का भी था, कछु गोपन को सहाय, ग्वाल बालन जो भी कुछ किया। और आज पीछे का एक शब्द याद नहीं आ रहा है, उसका अर्थ है कि राजा रानी की नजरों की वजह से ये सब मिलकर उन्होंने उठाया, लियो गिरवर उठाए, हाँ श्री राधे की कृपा से लियो गिरवर उठाए, श्री राधे की कृपा से लियो गिरवर उठाए, यानी कुछ सहायता माँ के दूध दूध और मक्खन की भी, कुछ सहायता ग्वाल बालों की कुश्ती की भी थी, और बहुत सारी सहायता राजा रानी की नजरों की थी, उठा लिया। तो गिरिराज के बीच में बहुत सारी लीला हुई है, बहुत सारी लीला, फिर भी ग्वाल वालों को टेंशन था, अरे भाई गिर गया तो सबने डंडे लगाए, बोले बालक है बेचारा, हमारे डंडे से हम पकड़ेंगे। तो हजारों लाखों ग्वाल वालों ने डंडे लगाकर सोचा कि हम पकड़ रहे हैं, इधर भी पकड़ रहे, इधर भी पकड़ रहे, इधर उधर सब दिशा में हमने पकड़ के रखा है। तो भगवान ने सबको दिखाने के लिए कि तुम्हारा बल का कोई काम नहीं है, ऐसे करके उसको थोड़ा टेल झुकाया उसको, सब लोग घबर गए, रे नहीं हमने उठा रहे, वही उठा रहा है। बहुत लंबी लंबी कहानी है इसकी। उनको अगस्त्य मुनि को पानी पिलाना था, एक बार भोजन में भगवान पहले ही उठ गए थे, लंबी कहानी बाद में बताता हूँ। भगवान पंगत में बैठे थे, लास्ट में अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि को पानी पीने का इंटरवल देने के पहले ही भगवान उठ गए, पार्वती देवी का उनका इशारा था कि ये अगस्त्य मुनि आ गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। तो कृष्ण ने कहा था चिंता मत करो मैं देख लूँगा सब। तो बीच में ही कृष्ण उठ गए, तो अगस्त्य मुनि ने कहा अरे बीच में जल पीने का भी टाइम नहीं दिया तुमने, हम लोग थोड़ा खाने के बाद थोड़ा पानी पीते ना सेटल करने के लिए, और ज़्यादा खाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते फिर मुझे। तो वो पानी का इंटरवल बहुत ज़रूरी है। तो अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि अरे आपने तो पानी का भी इंटरवल नहीं दिया हमको। तो बोले कोई बात नहीं, समय पर दे दूंगा पानी का, वाटर सप्लाई करूंगा। तो जब झुकाया ना तो अगस्त्य मुनि वहाँ खड़े थे, उन्होंने सफर पानी पी लिया। इस तरह से बहुत सारी मीठी मीठी लीलाएं गोवर्धन के तले हुई हैं, साके रस वाली, मधुर रस वाली, वात्सल्य वाली, सब मिक्स, सबके सहयोग से एक साथ उपस्थिति सबकी, सब एक साथ में हैं जो कभी भी नहीं होते। फिर सात दिन के सात रात के बाद, अभी बहुत लंबी लंबी कहानी है, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को सात प्रकार के मोहों से हर दिन मुक्त किया, एक एक प्रकार का मोह। अपने ऊपर बल का विश्वास था कि हमारा बल, तो वो तोड़ दिया टेढ़ा करके। फिर उन्होंने देवताओं को प्रार्थना की, अरे देवताओं कुछ कृपा करो बालक पर, हमको बचाओ, तो वो भगवान ने तोड़ दिया। आखिरी दिन सातवें दिन समर्पण उनसे प्राप्त किया भगवान ने। सब प्रकार के जो लगाव है ना हमारे जीवन में ना, बहुत सारी हमारी निष्ठाएं होती है कि हमारा पुलिस में कॉन्टैक्ट है, हम डॉक्टरों को जानते हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम बहुत अधिकारी पुरुष हैं, ये सब हमारे श्रद्धाएं हैं कि हमको बचाएंगी, है ना। अभी आप डॉक्टर हैं, आपका अस्पताल है, आपको क्या लगेगा, मेरे को क्या चिंता है, मेरा खुद का ही हॉस्पिटल है। वो सब झूठ है। समय आने पर ना खुद का अस्पताल, ना खुद डॉक्टर होने से कोई किसी को नहीं बचा सकता है, ना आपका धन बचाएगा आपको, ना आपका अधिकार बचाएगा, ना आपकी कीर्ति बचाएगी, ना आपके फॉलोअर आपको बचाएंगे। अरे मेरे पास तो ढेर सारे शिष्य हैं, मेरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मृत्यु के सामने कोई शिष्य नहीं, कोई धन नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं है। तो भगवान ने एक एक करके उनकी जो निष्ठाएं थी अपने ऊपर, देवताओं के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, वो सब कटवा के केवल उनकी तरफ श्रद्धा उन्होंने निर्माण की सातवें दिन में समर्पण। और फिर समर्थक बादलों का टैंक खाली हो गया। सात दिन और सात रात ही क्यों, 700 दिन 700 रात क्यों नहीं, इसका कारण एक ही है, क्योंकि सात दिन के बाद में समर्थक बादलों के पानी का पानी समाप्त हो गया। अगर उनका पानी 10 दिन चलता तो 10 दिन लीला चलती, लेकिन प्रलयंकारी बादल जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उसके सारा पानी जो है मुसलधार वर्षा करने के बाद भी 7 दिन में समाप्त हो गया। वो रोते रोते बादल जो है ना, वो भी व्यक्ति है, वो सेवक है इंद्र के, वो रोते रोते इंद्र के पास गए, भगवान क्या करें अभी, जल ही समाप्त हो गया। लेकिन महाराज हमको एक बात बतानी है आपको, जल तो हम बसा रहे थे आपके आज्ञा से, लेकिन हमने 7 दिन और 7 रात श्री कृष्ण को गिरिराज को उठाते हुए दर्शन किया है, पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य हमारे फलित हो गए। समवर्तक बादल ने इंद्र से कहा है, इंद्र को दिमाग में नहीं घुस रहा है वो बात, वो तो क्रोध में ईर्ष्या में है। इतनी सुंदर बात बताई फिर भी इंद्र के दिमाग में नहीं घुसी वो, क्योंकि जब अहंकार आता है तो वो बड़ी दीवार की तरह होता है, उसको छेद के कल्याण की बातें प्रवेश नहीं कर सकते दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर एक पैरा हो जाता है। इतनी सुंदर बात कहने सुन ली होती ना तो आगे का और भयंकर कार्य नहीं करता हो, बोले हट जाओ तुम लोग, मैं अभी वज्र लेके जा रहा हूँ, मेरा वज्र की तोड़ किसके पास में नहीं है, अब भी जा रहा हूँ, हटो आप लोग। ऐरावत पर बैठ कर निकले वज्र को लेकर और वज्र का प्रहार किया उन्होंने, वज्र टूट गया। तब उनको समझ में आया कि मेरे वज्र को तोड़ने की शक्ति केवल भगवान में है। अब तक लग रहा था कि ये नटखट उद्दंड बालक है जिसकी बातों में आकर बड़े बड़े ब्रजवासियों ने मेरी पूजा रद्द कर दी, लेकिन जब मुझे पता चल रहा है कि मेरा वज्र को तोड़ने की शक्ति केवल भगवान में है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बालक कोई उद्दंड 7 साल का बालक नहीं है, ये स्वयं मेरे आराध्य भगवान है, तब उसे होश आया। हमारे प्रिय राधा गोविंद जी महाराज ये कथा 7 दिन करते हैं, हर दिन 3 घंटे मिलकर, इतना उसमें क्या कहते हैं ना नॉलेज है या कहानियां हैं तात्पर्य के साथ। 7 दिन 3 घंटे हर रोज करते हैं एक ही प्रसंग पर, बोलो, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ सिखाया है इस लीला के माध्यम से, एक लीला के माध्यम से। और 7 दिन 7 रात जो गोवर्धन के तले आनंद हुआ वो कभी कहीं प्रकट नहीं हुआ, जो गोवर्धन पूजा का आनंद था वो भी कुछ नहीं था जितना आनंद एक साथ में भगवान के गोवर्धन को पकड़े हुए गोवर्धन के तले हुआ। अभी 7 दिन 7 रात ग्वाल बालों ने ना खाया ना पिया ना विश्राम किया ना लघुशंका किया ना कोई ब्रेक लिया ना कुछ नहीं किया, कैसे मुमकिन था ये, कैसे हुआ सब कुछ, ये हो सकता है क्या? तो मैं अगर कथा करने बैठूंगा तो बोलूंगा कि मैं 7 दिन 7 रात कथा करने वाला हूँ तो 4 घंटे के बाद मैं अकेला रहूंगा यहाँ पर, मेरा संकल्प वही खत्म हो जाएगा। और मैं ज़्यादा जिद्दी हूँ तो 7 घंटे बैठूंगा, उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा तो मुझे भी भूख लगेगी, आप तो पहले ही गए हैं भूख भूख के मारे, और उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं किया तो कैसे जीवित रहे हो? वो भी ऐसे नहीं थे कि फर्स्ट डे अच्छे थे, नेक्स्ट डे ऐसे हो गए, फिर थर्ड डे ऐसे हो गए, और 5वें दिन सब लोग बेहोश हो गए, और जो 7वें दिन वर्षा खत्म हो गई तो सब लोग अधमरे हो गए थे, भगवान को सबको आईवी लगाना पड़ा तब होश में आ गए। ऐसा नहीं, ऐसे उत्साह में खड़े देख रहे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, क्योंकि भगवान वैसे ही बहुत सुंदर है, सर्वोत्तम सौंदर्य है उनका, ऐश्वर्य कोई तोड़ नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है भगवान के सौंदर्य के सामने। और वही सौंदर्य वाले भगवान अभी एडिशनली एक हाथ पे गिरिराज को धारण किए हुए हैं, उसमें एडिशनली एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं। वो दर्शन जो था ना, वो दर्शन की रूप माधुरी पी पी कर किसी को प्यास नहीं लगी, भूख लगी ना नींद आई, इतना सौंदर्य है। रूप माधुरी ये भगवान के 64 कलाओं में से एक कला है रूप माधुरी, उनका रूप जो है ना इतना सौंदर्यवान होता है कि कोई उसका तुलना नहीं हो सकती है। उसमें गिरिराज धारण, उसमें मुरली वादन, जब मुरली बजाना शुरू किया ना तो सभी ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को टेंशन आया कि जब ये मुरली बजाता है तो पत्थर पिघलता है, अगर ये गोवर्धन पिघल गया तो हमारा क्या होगा, हम लोग सब लोग वही हैं, इसका उंगली भी वही रहेगा, ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सब लिक्विड होकर चला जाएगा, फिर हम लोग सब लोग बह जाएंगे बारिश में। मुरली बजाई और मुरली बजाने के बाद पत्थर कब पिघलता है, जब भगवान की अनुमति हो तब पिघलता है, जब भगवान नहीं चाहते तो मुरली बजाने पर नहीं पिघलेगा वो, तो मुरली तो बजाई उन्होंने, बहुत अच्छी मुरली बजाई, सबको बहुत अच्छी तरह से मोहित कर दिया, आनंदित कर दिया, भूख प्यास से मुक्त कर दिया भगवान ने। जब भगवान का चिंतन अनन्य होता है तो ये सब भूख प्यास निद्रा सब फट जाती है। भूख प्यास निद्रा कब आती है, जब हमारा भगवान के ऊपर अनन्य चिंतन नहीं है, अनन्य श्रवण नहीं है, तभी हमको नींद आती है। लेकिन जब भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं, तो ये सब भूख प्यास सब कोई चीज़ नहीं है। इसलिए 7 दिन के 7 रात के बाद में उन्होंने उनका जल समाप्त हो, इसलिए उसको नीचे रख दिया। ग्वाल बालों को लग रहा था कि ये लीला समाप्त क्यों हो रही है, व्हाई इट इज एंडिंग, लेकिन हो गई, जैसे हमारी यात्रा भी समाप्त हो रही है आज, वैसे हो रही, हो गई। तो भगवान ने कहा देखो देखो वर्षा समाप्त हो गई है, अभी आप जा सकते हो उसके बाहर, मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ। फिर भी ग्वाल वालों को ना वो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो जाओ देखो देखो, तो हाथ लगा के देखा तो वर्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि अनंत शेष नाग ने पूरा उधर लाउंड लगा के रखा है, चक्र दिन रात घूम रहे हैं, सब बाष्प कर रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं था कि केवल गोवर्धन पे वर्षा हो रही है और वहीं से पानी ऊपर जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और गोवर्धन जी बड़ा आनंद ले रहे हैं, उनके शरीर के रोमांच खड़े हो रहे हैं, वो तो आनंद से विभोर हो रहे हैं। उनको वो इतना वज्राघात भी हुआ उसके ऊपर, इतनी घनघोर 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जब भगवान के प्रेम का आनंद प्राप्त होता है तो आजू बाजू वाले दुख जो है वो क्षीण हो जाते हैं। वो है अपनी जगह पर पावरफुल, उसका परिणाम क्षीण हो जाता है। अभी जिस पर प्रलयंकारी वर्षा अभी किसी पर नहीं हो रही, खाली गोवर्धन पे हो रही है, ब्रह्मांड पे नहीं हो रही है, सारी शक्ति जो है वो केवल गोवर्धन पे डाली जा रही है, नीचे भी पानी नहीं गिर रहा है, बोलो तो सारा आघात अभी एक ही व्यक्ति सहन कर रहा है, कितना बड़ा त्याग है उसको। सारे ब्रजवासियों को आनंद मिले, सुख मिले, सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए एक गिरिराज जो है ना वो सारा कष्ट सहन रहा है। लेकिन क्योंकि उसका एक उंगली से भगवान का संबंध है, इसलिए उतने सारे स्पर्श से ही, उतने से ही स्पर्श से ही गिरिराज को इतना सा भी कष्ट नहीं हुआ, परम आनंद का अनुभव हुआ। और घनघोर प्रलयंकारी वर्षा का दुष्परिणाम इतना सा भी नहीं हुआ। हमारे लिए बड़ी सीख है ये बात, भगवान से सदैव संपर्क बनाए रखो। सारी शक्ति जो आपको चाहिए वो भगवान के संपर्क से मिलेगी। ऑल द नीडफुल एम्पावरमेंट विल बी अवेलेबल टू यू इफ यू आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। सदैव भगवान से संपर्क बनाए रखो। फिर सब लोग बाहर निकले, फिर भगवान ने पुनः उसको अपनी जगह पर रखा। गिरिराज धन्य हो गए। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 7 दिन 7 रात, ये आंकड़ा जो है 7 का, इसका क्या कनेक्शन है? तो ब्रिजवासी गोस्वामी ने मुझे बताया कि 7 कोस की गैप थी। जब हनुमान जी सोच रहे थे अभी अनेक पत्थर क्यों उठा के ले गए, एक ही लेके जाएंगे तो झट से काम हो जाएगा। 7 कोस की गैप थी जो गोवर्धन को अवसर नहीं मिला उसको पूरा करने का। गोवर्धन भी 7 कोस के विस्तारित थे, उठाते रखते एक ही पर्वत में काम हो जाता। 7 कोस की जगह 7 कोस के गिरिराज, लेकिन अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि मैं 7 दिन 7 रात आपको मेरे ऊपर छतरी के रूप में धारण करूंगा, मेरे ऊपर आपको स्थान दूंगा, मेरे ऊपर आपको स्थानापन्न करूंगा। इसलिए भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज को छत्र बनाया अपना और अपने ऊपर उसको स्थान दिया कि ये मेरा भक्त है जो मेरे सर आंखों पर है। ऐसी ये गोवर्धन की लीला है। उसके बाद इंद्र को पता चला, वो नीचे आया, मुरली बजा रहे भगवान, एक हाथ से पकड़ा है। तो उधर से आया तो भगवान ने इधर देखा सब लोगों को प्रेम से, उसको लगा उधर से आऊं तो भगवान ने इधर देखा अपने भक्तों को, समझ में आया कि अभी हमारे स्वामी नाराज है। सीधे ऊपर गया गुरुजी के पास बृहस्पति देव, उन्हें बहुत डांटा, उनको बहुत निर्भत्सना की उनकी, क्या लाभ है तुम्हें, तुम इंद्र के, तुम देवेंद्र बने हुए देवताओं के राजा बने हो, स्वामी को पहचान नहीं सके, उनके ऊपर इतना भयंकर अपराध किया, इतना भयंकर अपराध किया कि तुम माफी के लायक नहीं हो। इंद्र गिड़गिड़ाए, महाराज जी ऐसा मत करो, मैं मानता हूँ कि मूर्ख नंबर 1 हूँ, कुछ उपाय तो बताओ, मैं आपके पास शरण आया हूँ, आप मुझे बचाओ, मैं मूर्ख हूँ, मैंने गलत काम किया है, सब कुछ मंजूर है मुझे। उन्होंने कहा जाओ किसी भक्त से मिलो। तो सुरभि से मिले, वहाँ पर पश्चाताप किया, बहुत रोए। मैंने कहा सुरभि ने 7 दिन 7 रात दर्शन किया था, इसलिए उन्होंने अपराध भी ग्रहण नहीं किया इंद्र का, क्रोध भी नहीं आया उनको देखकर, इतने आनंद से भरे हुए थे वो 7 दिन 7 रात के। तुरंत इंद्र को लेके गए, इंद्र के एक जगह पर क्षमा मांगी भगवान के, दंडवत प्रणाम किया, और एक जगह पर सुरभि ने उनको प्रस्तुत किया, फिर भगवान की क्षमा मांगी। भगवान बड़ा नाराज थे उनसे, कारण क्या था? क्योंकि इंद्र ने भगवान को अपने भक्तों से अलग, सॉरी, इंद्र ने पूरे ब्रज को भक्तों सहित नष्ट करना चाहा। एक तरह से भगवान ने इंद्र को माफ करने का एक भी और कारण था, क्योंकि सारे भक्तों को उन्होंने अपने गलत कार्य से एकत्र किया, तो कभी नहीं होते हैं। ब्रह्मा ने जब बछड़े चुराए तो ब्रह्मा से इंद्र से भी अधिक नाराज थे भगवान, क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों से उनको जुदा करने का प्रयास किया, जुदा कर भी दिया, सारे बालकों को बिछड़ा दिया भगवान से। इंद्र ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया उनको मारने के हेतु से, लेकिन सबको एकत्र किया, भगवान बड़े प्रसन्न थे, कुछ चेतावनी दिया दोबारा नहीं करना ऐसे। तो इंद्र का जो गर्व था वो हरण हो गया, इंद्र पुनः अपनी चेतना में आ गया। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आपको प्रसन्न करूँ, अभिषेक करूँ। फिर सारे देवताओं को आदेश दिया जाओ अपने अपने स्थान का बेस्ट चीज़ लेके आओ। तो अपने अपने स्थानों का बेस्ट चीज़ लेके फिर भगवान का अभिषेक किया गया, फिर ग्वाल बालों ने अभिषेक किया, उसके बाद में ये लंबी लीला समाप्त हो गई। देखो गोवर्धन पूजा के दिन यानी अश्विन अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा हुई, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ, अश्विन के बाद में कार्तिक शुरू हुआ, कार्तिक के प्रतिपदा शुद्ध प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा, दूसरे दिन उपनंद बाबा के घर पे गए भैयादूज बनाने के लिए। उपनंद महाराज के लड़कियों के साथ कृष्ण बलराम को वो ले गए और वहाँ पर भैयादूज का कार्यक्रम हुआ। तृतीया के दिन वर्षा शुरू हुई, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 7 दिन वर्षा हुई। दशमी के दिन भगवान ने पर्वत नीचे रखा और एकादशी के दिन भगवान का अभिषेक किया गया और गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। ये उसका सीक्वेंस है। तो दीपावली के बाद में 7 दिन तो वर्षा ही होती रहती है, आपको कल्पना कर रही है कि हम वर्षा में भीग रहे हैं, 7 दिन इंद्र वर्षा कर रहे हैं, और एकादशी के दिन श्री गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये सुंदर गोवर्धन लीला समाप्त हो गई। जय जय श्री राधे श्याम। और कोई प्रश्न है किसी का? यस हाँ, वो अमावस्या के दिन हुई, लेकिन उतना निश्चित है दामोदर लीला अमावस्या के दिन हुई, ये बात पक्का निश्चित है। दूसरे दिन गोवर्धन लीला हुई। बहुत समय अंतर था, दामोदर लीला के भगवान छोटे से थे उस समय, बंद करो उसको। दामोदर लीला में बहुत छोटे थे भगवान, जब उन्होंने अगासुर को मारा उसके बाद वो गोपाष्टमी हुई, उसके बाद में बड़े गायों का जिम्मेदारी मिली, उसके बाद में 7 साल के उम्र में उन्होंने गिरिराज को उठाया। 7 साल की लीला में गिरिराज को उठाने के बाद में रासलीला किया उन्होंने, तो 8 साल की उम्र में थे, 7 complete 8 started। 5वें से 6वें साल में सब ग्वाल बाल गायब थे, 5वें बलराम जी के बर्थडे के दिन ग्वाल बाल सब छीन के लेके गए, है ना, बलराम जी का बर्थडे था, 1 साल उधर रहे, तो बलराम जी का जब 6th birthday आया तक ग्वाल बाल वापस आए, ऐसा टाइम लाइन है पूरा, एक साथ में नहीं हुआ है, अलग अलग टाइम पे हुआ है। और कोई प्रश्न है? चल प्रभु चल थोड़ा धीरे धरा यमुना एक बीच में नदी है, उत्तर में मथुरा है, बीच में यमुना है, उसके पार करेंगे तो गोकुल है। तुरंत यमुना को लग के गोकुल है, उसके आगे वृंदावन है, उसके आगे नंदगांव बरसाना है, उसके आगे काम्यवन है, ऐसी स्थिति है। और गोकुल के भी दक्षिण में बलदेव जी का स्थान है, दाऊ जी। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव कारागृह के बाहर आए, फिर कहाँ पर आए? यमुना किनारे पे आए, फिर यमुना ने रास्ता दिया, फिर कहाँ गए? गोकुल में गए। यमुना ने रास्ता दिया, यमुना समाप्त हो गई, तुरंत गोकुल चालू हो गया। गोकुल गोकुल पूरा एक क्षेत्र है, पूरा नंदगांव पूरा क्षेत्र है, बरसाना पूरा क्षेत्र है, वैसे गोकुल पूरा क्षेत्र है। उसके अंदर ब्रह्मांड घाट है, रमन रीति है, रावल है, और गोकुल भी उसके अंदर है। और कोई? गर्म पानी दो। देखो, आपकी और हमारी एक रात्रि में कीटकों की तीन तीन पीढ़ियां समाप्त होती है, तब आपको कैसा लगता है? आपको लगता है मेरी एक रात समाप्त हो गई, उनकी तीन पीढ़ियां समाप्त हो गई। एक कीटक ने जन्म लिया और जवान हो गया, बच्चे पैदा किए, बुढ़ा हो गया, मर गया, उसके बच्चों ने जन्म लिया, उसने सब किया, तीन पीढ़ियां हो गई। आप खाली सोए थे, आपके सुबह हो गए, उठे आप ब्रश करने लगे, तो तीन पीढ़ियां समाप्त हो गई। तो आपको क्या लगता है? हमारी तो एक ही रात समाप्त हो गई। वैसे ब्रह्मा को लगता है नहीं, वो लॉन्ग ही होता है। ब्रह्मा जी का समय लॉन्ग ही होता है। 432 करोड़ साल की उनकी एक रात होती है, 12 घंटे उनके, हमारे 432 करोड़ साल है। उतने 432 साल करोड़ साल का एक दिन होता है उनका, 12 घंटे का। ऐसा मिलके उनका 464 करोड़ साल का एक दिन होता है उनका। ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है, ऐसे 12 महीने का एक साल होता है, ऐसे 100 साल जीते हैं वो। तो उनका वन मोमेंट इतना लंबा होता है माता जी, ऐसे वो कीटक बोलते रहेंगे अरे ये आदमी जो है इंसान सोता है तो तीन पीढ़ियां तक सोते रहता है। वो सोचता होगा ना कि हमारी तीन पीढ़ियां बीत गई तो भी ये व्यक्ति सो ही रहा है। देखो अमीबा होगा हाँ, और वो आपके इधर होगा, तो वह क्या बोलेगा, मैं तो सागर में डूब रहा हूँ। वो तो पसीने का एक बिंदु है, एक पसीने का गर्मी वाला बिंदु है वो, उसमें अमीबा डूब रहा है, उसका तो मैं सागर में डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा ये सागर नहीं है, ये 350 करोड़ सागर उसके शरीर में है, वैसा मनुष्य है ये। 350 करोड़ जिसमें हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें से पसीना निकल रहा है, उसके एक पसीना में आप हो। पर कभी धार भी लगती है, सारे सागर एकत्र होकर बहने भी लगते हैं और टप 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 सागर गिरते हैं ज़मीन पर जाकर। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन यही है, सब कुछ नश्वर है। ब्रह्मा जी का इतने साल 3 trillion 11 billion ईयर्स जीना, और आपका 50-60 साल जीना, और कीटकों का रात में तीन पीढ़ी समाप्त होना, ये सब झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है। सत्य एक ही है, कृष्ण भगवान बंसीवट के नीचे खड़े हैं, उनके बाएं बाजू में जमुना राधा रानी खड़ी है, वो मुरली बजा रहे हैं और सब लोग आनंद ले रहे हैं, यही सत्य है, वो बदलता नहीं है। चाहे ब्रह्मा जिए जन्म ले मर जाए, हम जिए मर जाएं, ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, वर्षा हो, चलते रहते हैं। ओके लास्ट, ओके क्विक क्विक क्विक, यस। गोपी कुआं, गुड प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। क्योंकि गोपियां ही वहां आकर वो भैंसे कपड़े बर्तन धोया करती थी। आपको क्या लगता है, ग्वाल बाल आके धोते थे बर्तन वहां पर? गोपियां ही धोती थी, तो गोपियों के लिए बनाया वो, कि भाई यहां धो लो वहां मत धो लो, इसलिए गोपी कुआं नाम है उसका। और बताइए। यस कल्प भेद है।